हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के रविवार के श्रीमद् भागवतम क्लास में। भगवान श्री कृष्ण के गोवर्धन लीला करने के 8 कारण, जिनमें से हम तीसरे कारण पर है। भगवान ने गोवर्धन पूजा का उद्घाटन करने हेतु ये पूरी गोवर्धन लीला रचाई। तो भगवान की नजरों में पूजनीय कौन है? गोवर्धन कोऑपरेट्स विद द प्लान ऑफ कृष्णा। गोवर्धन लिव्स टू सेल्फलेसली सर्व अदर्स। चरण छूने योग्य कौन है? जो अपने आचरणों से अपनी योग्यता सिद्ध करें। तो पिछली बार हमने सारांश में ये लिया था, हु इज योर फॉल बैक ऑप्शन इन लाइफ। उदाहरण दुर्योधन और अर्जुन। दुर्योधन के जीवन में जब भी कोई विकट परिस्थिति आती तो दुर्योधन भागता शकुनी मामा के पास। तो दुर्योधन का फॉल बैक ऑप्शन था शकुनी, और अर्जुन के फॉल बैक ऑप्शन स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण। तो केवल हम हमारी भक्ति में किसको चुनते हैं? हमारे सलाहगार। सलाहगार का अर्थ होता है एडवाइजर्स। हमारे एडवाइजर्स कौन हैं? उससे समझ में आ सकता है कि हमारा गंतव्य स्थान क्या है, जैसे कि दुर्योधन और अर्जुन। फिर हमने उदाहरण लिया अर्जुन के सारथी कृष्ण और कर्ण के सारथी शल्य, और दोनों में महाभारत में वर्णन है कि एक तरफ अर्जुन और अर्जुन का रथ, अर्जुन के सारथी, जो कि भगवद गीता जैसा ग्रंथ बना और उसका कवर पेज ये चित्र है, और कर्ण और कर्ण का सारथी, जिस क्षण शाल्य ने कर्ण का सारथ्य लिया उस क्षण से उन दोनों के बीच कौन सा गीत प्रारंभ हुआ? कोई दिव्य गीत नहीं, उन दोनों के बीच केवल झगड़े और तिरस्कार एक दूसरे का। तो यहां पर भी समझ में आता है कि हम हमारे जीवन का सारथी किसको बनाए हैं। क्या भगवान श्री कृष्ण हमारे जीवन के सारथी हैं या शल्य हमारे जीवन के सारथी हैं? और पिछले दफा हमारा ये अंतिम स्लाइड था, ओनली अ स्माइलिंग कृष्णा कैन सेव अ क्राइंग अर्जुन। तो हाल ही में कुछ दिनों से मैं रामायण का अध्ययन कर रहा हूं, और रामायण एक ऐसा ग्रंथ है कि केवल एक प्रसंग लें तो उसमें इतनी शिक्षाएं प्राप्त हो सकती हैं कि उस एक प्रसंग का यदि एक श्लोक, उस एक श्लोक का यदि एक शब्द, एक अक्षर भी हम हमारे जीवन में उतार लें तो रामायण एक ऐसा ग्रंथ है कि हमारा उद्धार निश्चित है। तो ये जो हमने विषय लिया है, भगवान के नजरों में पूजनीय कौन है, तो इसी के संदर्भ में जो मैं हाल ही में रामायण में से पढ़ा, बहुत ही एक ऐसा प्रसंग है कि जब मैं उसे पढ़ रहा था मेरे रोमांच पुलकित हो रहे थे। ये एक ऐसा प्रसंग है, आप लोगों में से बहुत भक्तों ने ये प्रसंग सुना भी होगा या हो सकता है कि किसी चित्र में देखा भी होगा, चलचित्र में। और ये एक ऐसा प्रसंग है जो कि बहुत रिलेवेंट है, प्रैक्टिकल है एक साधक के लिए, विशेष रूप से हम जो कलयुग में जूझ रहे हैं हमारे अनर्थों के साथ, और एक किरण है, आशा की किरण है भगवान की कृपा, और उसके साथ साथ एक चिंगारी है हमारे अंदर, वो इच्छा, वो इच्छा रूपी चिंगारी है भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध प्रेम प्राप्त करने की। हाँ, ये बात अलग है कि उसके आसपास अनुकूल घास इत्यादि नहीं होगी, परंतु कम से कम वो एक चिंगारी है हमारे अंदर, जिसके वजह से हम लोग सब इस्कॉन में आए। तो आप लोग आज दिल थाम कर बैठिए, ये एक ऐसा प्रसंग है जो हम सबको हिला देने वाला है। Who says our Vedic scriptures do not have action? कौन कहता है कि हमारे जो हिंदू ग्रंथ हैं, वैदिक ग्रंथ हैं, ये वैदिक ग्रंथों के अंदर कुछ रोमांचक नहीं है, कुछ एक्साइटिंग नहीं है, कुछ एडवेंचरस नहीं है। ये केवल रामायण ग्रंथ का एक छोटा सा प्रसंग है, बस एक छोटा सा प्रसंग है। और कितने लेसन्स? 52 लेसन्स हैं। हम प्रयास करेंगे आज ही 52 लेसन्स पूरा करने की। क्योंकि मैं आज इसलिए बोल रहा हूं कि आज का दिन रात के 12 बजे समाप्त होगा। घबराइए मत। तो मैंने इस पूरे प्रसंग को टाइटल दिया है क्लैश ऑफ द टाइटंस। तो आपको कोई हॉलीवुड मूवी देखने की जरूरत नहीं है, यहां ये दो शख्स विश्वामित्र और वशिष्ठ मुनि, इन दोनों के जीवन की ये जो कथा है, ये अपने आप में ऐसे ऐसे गुण दुर्गुण दोनों को प्रदर्शित किए हैं, जैसे कि शक्ति, ऐश्वर्य, सौंदर्य, ज्ञान, शोहरत, शान, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अहंकार, तपोबल, विनम्रता, आदर्श व्यवहार, यू नेम इट एंड इट्स देयर इन दिस एपिसोड। ये सब कुछ, और जैसे मैंने कहा कि यदि आपको इस वर्षा ऋतु में पुलकित होना है, रोमांचित होना है, तो अपने सीट बेल्ट्स फासन कर लीजिए। तो विश्वामित्र मुनि, सबसे पहले हम इनके विषय में बोलना चाहेंगे, क्योंकि मेन जो किरदार निभाया है इस पूरे प्रसंग में वो है श्रील विश्वामित्र मुनि, जो कि राम और लक्ष्मण के गुरु बने। सबसे पहले हमें क्या ध्यान में रखना है कि जो राम और लक्ष्मण के गुरु बने वो विश्वामित्र मुनि के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं, और वो वशिष्ठ मुनि के विषय में चर्चा कर रहे हैं। ये दोनों, विश्वामित्र और वशिष्ठ मुनि, ये दोनों पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के गुरु बने। तो डेफिनेटली ये साधारण व्यक्ति नहीं हो सकते, दे कैन नॉट बी ऑर्डिनरी, क्योंकि भगवान जब इनको चुने हैं अपने गुरु के रूप में, तो भगवान सोच समझ कर चुनते हैं। तो विश्वामित्र मुनि इनके विषय में रामायण में बताया है कि ये चंद्रवंश के थे, बहुत बड़े राजा, और इनके वंशज जैसे कि पुरुरव, जहनु, पुरुरव के पश्चात जो प्रमुख वंशज इनके हुए उनका नाम था जहनु, जिन्होंने गंगा, पूरी गंगा को पी लिया था, इसलिए गंगा का एक नाम है जहनवी। तो ये जहनु ऋषि या राज ऋषि इनको कहेंगे। फिर कुश या कुशनाभ, गाधी, और गाधी ये महाराज के पुत्र हुए विश्वामित्र मुनि, जिनका पहले का नाम था कौशिक। तो विश्वामित्र मुनि का पहले का नाम था कौशिक, और विश्वामित्र मुनि की एक बहन भी थी जिसका नाम था कौशिकी। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस पूरे प्रसंग में उनका भी संबंध आता है, उनकी बहन का, कौशिकी का। तो यहां पर हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज का प्रेजेंटेशन किस प्रकार का होने वाला है, कि जितने इस पूरे प्रसंग के किरदार हैं, चाहे वो विश्वामित्र मुनि हो, वशिष्ठ मुनि हो, जो भी कोई और हो, वो सब अपने अपने उदाहरण से एक एक लेसन या दो दो या तीन तीन या अनेकों लेसन्स सिखाए हैं। अब वो हमें देखना है कि वो कौन से लेसन्स हैं अनुकूल प्रतिकूल, लेसन्स विच वी शुड बी फॉलोइंग एंड थिंग्स विच वी शुड बी अवॉइडिंग। तो नाम और उनके, उन्होंने क्या लेसन सिखाया, इस प्रकार से ये 52 लेसन्स बने हैं इस पूरे प्रसंग में। तो हम रामायण का जो बालकांड है, तो वहां अब बालकांड की शुरुआत हम नहीं करेंगे, परंतु ये बता देंगे अंत में कि रामायण का ये जो पहला कांड है बालकांड, इसको बालकांड क्यों कहा गया है। ये विश्वामित्र मुनि, कोई बाल लीला नहीं रामचंद्र जी की, ये मत समझना कि बालकांड इसलिए है कि कोई बाल लीला होगी रामचंद्र जी की, नहीं, ये विश्वामित्र मुनि के पीछे इस कांड को ये नाम मिला है बालकांड। तो विश्वामित्र मुनि जब राम और लक्ष्मण को दशरथ महाराज से मांग कर ले गए, ताटका, मारीच, सुबाहु, इन सब को परास्त करने के लिए, तो हम अब वो सब प्रसंग नहीं लेंगे, वो फिर कब वो प्रसंग लेंगे, हम आगे चलते हैं। जब विश्वामित्र मुनि का जो एक मुख्य प्रयोजन था वो ये था कि राम और सीता का विवाह कराना, सीताराम कल्याण। इसके पश्चात विश्वामित्र मुनि मिथिला में जब पहुंचे और राम सीता का विवाह करा दिया, उसके पश्चात विश्वामित्र मुनि कहीं पर पूरे रामायण में मेंशन नहीं है। विश्वामित्र मुनि वो हिमालय की ओर निकल पड़ते हैं, ही इज नोवेयर टू बी सीन द एंटायर रामायण आफ्टर दैट। तो हम प्रसंग की शुरुआत करते हैं जब विश्वामित्र मुनि राम लक्ष्मण को लेकर सिद्ध आश्रम से निकले, जहां पर वो रहा करते थे, स्वयं वो रहा करते थे, सिद्ध आश्रम से निकले, रास्ते में, मिथिला के रास्ते में, मिथिला की ओर निकले हैं अब, तो मिथिला के रास्ते में एक बहुत प्रसिद्ध लीला हुई, कोई जानता है, अहिल्या उद्धार। तो अहिल्या उद्धार, वो भी प्रसंग हम नहीं लेंगे इस बार, हम सीधा पहुंचते हैं मिथिला। पहुंच गए हम लोग सीधा मिथिला पहुंचते हैं, और मिथिला में अब राम लक्ष्मण, यहां पर विश्वामित्र मुनि वो उनको लेकर आ रहे हैं, और कोई भी राम लक्ष्मण को पहचानता नहीं वहां पर। तो विश्वामित्र मुनि अब राम और लक्ष्मण का परिचय दे रहे हैं महाराज जनक को, और एक उनके गॉड ब्रदर, उनके इक्वल, जिनका नाम शतानंद ऋषि। तो शतानंद ऋषि को परिचय दे रहे हैं राम और लक्ष्मण का। तो शतानंद ऋषि को कहते हैं विश्वामित्र मुनि कि ये राम केवल 12 वर्ष का है ये, और अकेले इसने ताटका का वध किया। अब सब ताटका को जानते थे, तो ताटका का वध 12 वर्षीय इस नव युवक ने किया। जब शतानंद ऋषि इन्होंने ये सुना, कोई फर्क नहीं पड़ा उन्हें। उनका एक्सप्रेशन क्या था, तो कौन सी बड़ी बात है। तो विश्वामित्र मुनि सोचने लगे कि ताटका का वध और ये कह रहे हैं कौन सी बड़ी बात है। फिर विश्वामित्र मुनि कहते हैं कि न केवल ताटका बल्कि मारीच और सुबाहु उनको भी परास्त किया। शतानंद ऋषि फिर उनका एक्सप्रेशन, तो कौन सी बड़ी बात है, सो व्हाट, मैंने अपने स्वयं के बल अतिबल सारे अस्त्र शस्त्र राम को दिए और राम ने उन सब का उपयोग भली भांति किया, मैंने सिखाया नहीं, राम जानते थे कि उनका उपयोग कैसे करना है। अब विश्वामित्र मुनि के जो निजी अस्त्र शस्त्र, वो भी सभी पहचानते थे कि वो कितने शक्तिशाली हैं, कौन उनको हैंडल कर सकता है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैंडल कर सकता। ये भी सुनने के पश्चात शतानंद ऋषि, उनका एक्सप्रेशन वही था, सो व्हाट। तब फिर विश्वामित्र मुनि ने कहा कि मिथिला आने के रास्ते में राम ने एक पत्थर को अपने चरणों से स्पर्श किया और उस पत्थर का उद्धार या अहिल्या का उद्धार किया। जैसे ही शतानंद ऋषि ने यह सुना, शतानंद ऋषि वो दंडवत प्रणाम अपना करने लगे। किनको? विश्वामित्र मुनि को और रामचंद्र जी को। अब वो इतना प्रभावित हुए ये सुनकर कि ये 12 वर्षीय बालक ने, बालक ही मानते, क्योंकि ये लोग, ये जो ऋषि दोनों, शतानंद ऋषि और विश्वामित्र मुनि, बहुत वयस्क, तो ये 12 वर्षीय नव युवक ने अहिल्या का उद्धार किया। आप लोग भी अचरज कर रहे होंगे कि ताटका का जब वध सुना, मारीच सुबाहु उनके ऊपर विजय जब सुनी, तो शतानंद ऋषि के अंदर वो बिल्कुल भी प्रभावित होने का कोई लक्षण दिखाई नहीं दिया। परंतु यहां पर ये कोई हीरोइक डीड नहीं था, केवल एक पत्थर को स्त्री में परिणित कर दिया। तो शतानंद ऋषि इतना ज्यादा प्रभावित क्यों हुए, क्योंकि वो अहिल्या, वो शतानंद ऋषि की स्वयं की माता थी। गौतम ऋषि और अहिल्या के पुत्र थे शतानंद ऋषि। इसलिए सबसे पहला लेसन शतानंद ऋषि हमें सिखा रहे हैं, रियल ग्लोरी इज नॉट इन डिफीटिंग समवन बट रादर अपलिफ्टिंग समवन। बहुत सुंदर लेसन शतानंद ऋषि सिखा रहे हैं कि किसी को परास्त करना, चाहे बाण से या वाग बाण से, दोनों बहुत शक्तिशाली हैं। इसलिए इंग्लिश में स्वॉर्ड्स और वर्ड, इनका स्पेलिंग अल्फाबेट्स एक ही है, खाली रिशफल कर दो। वर्ड्स, ये जो शब्द है इसको रिशफल कर दो तो क्या आता है, स्वॉर्ड। और कई बार जीभ से निकले हुए जो बाण हैं वो ज्यादा घातक होते हैं। अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस, जीभ पर यदि कोई घाव हो जाए तो सबसे पहले वो हील होता है बाकी शरीर की तुलना में। और कहीं पर घाव हो आपको, वूंड्स on the tongue heal fastest. But wounds because of the tongue, sometimes they never heal. तो यहां पर अपलिफ्टिंग समवन ये एक ऐसा गुण है जो बहुत ही दुर्लभ पूजनीय व्यक्तियों में ही पाया जाता है. हमारा विषय क्या है? पूजनीय कौन है? इट इज वेरी इजी टू डिफीट समवन, बट द मोस्ट डिफिकल्ट इज टू अपलिफ्ट समवन. इसलिए श्रील प्रभुपाद कहा करते थे, प्रीचिंग मीन्स नॉट टू डिफीट द अदर पर्सन, प्रीचिंग मीन्स टू विन द हार्ट ऑफ द अदर पर्सन, टू अपलिफ्ट द अदर पर्सन. दैट इज कॉल्ड प्रीचिंग, दैट इज कॉल्ड रियल प्रीचिंग. तो यहां शतानंद ऋषि वो इतना प्रसन्न हुए ये सुनकर कि अहिल्या का उद्धार किया, क्योंकि उनकी माता एक ऐसी असहाय परिस्थिति में थे कि शतानंद ऋषि स्वयं कुछ नहीं कर पा रहे थे, स्वयं गौतम ऋषि कुछ नहीं कर पा रहे थे, कोई कुछ नहीं कर पा रहा था, केवल प्रतीक्षा में अहिल्या थी प्रभु श्री राम के. कल्पना कीजिए कि पत्थर बन जाना, और न केवल कुछ दिन हफ्ते महीने बल्कि पूरा एक युग. तो इसलिए शतानंद ऋषि ने उसको रिकग्नाइज किया. हमारी दृष्टि शतानंद ऋषि की तरह होनी चाहिए कि हम जो एक्चुअल विक्ट्री है उसको रिकग्नाइज करना सीखें. और यहां पर उन्होंने बताया, एक्चुअल विक्ट्री इज द विक्ट्री of uplifting someone from the fallen condition. That is the real victory. अब शतानंद ऋषि, उनकी प्रमुख कृतज्ञता विश्वामित्र मुनि के प्रति हुई, क्योंकि विश्वामित्र मुनि लेकर गए प्रभु श्री राम को अहिल्या का उद्धार करवाने, और विश्वामित्र मुनि अब इनको लेकर आए हैं मिथिला. तो अब शतानंद ऋषि उन्होंने क्या किया, उनके स्वयं के डिसाइपल्स थे वहां, शतानंद ऋषि के स्वयं के डिसाइपल्स थे वहां पर, विश्वामित्र मुनि के दो डिसाइपल्स वहां पर, जनक, पूरी सभा थी. तो सबके सामने उन्होंने राम और लक्ष्मण जाने कि उनके गुरु कौन है, तो विश्वामित्र मुनि का गुणगान प्रारंभ किया कि आप जिनके साथ रह रहे हो, रामचंद्र जी को पूछा कि आप जानते हो कि आपके गुरु वो कितने प्रणम्य हैं. रामचंद्र जी नहीं जानते थे इतना विश्वामित्र मुनि के विषय में, तो इसलिए शतानंद ऋषि ने बताना प्रारंभ किया. और क्यों रामचंद्र जी नहीं जानते थे? क्योंकि विश्वामित्र मुनि ने, अभी इतना समय बीत चुका था, विश्वामित्र मुनि राम और लक्ष्मण के साथ दिन रात उन्होंने एक साथ संग किया, परंतु एक क्षण भी, एक ऐसा कोई दिन भी नहीं गया जहां पर विश्वामित्र मुनि अपने विषय में कुछ बताए. किसको? राम और लक्ष्मण को नहीं. उन्होंने वनों के विषय में बताया, पर्वतों के विषय में बताया, अलग अलग ऋषि मुनियों के विषय में बताया, उन सब का गुणगान किया विश्वामित्र मुनि ने, परंतु स्वयं का गुणगान एक शब्द में भी नहीं किया. तो यहां पर दूसरा लेसन हमें विश्वामित्र मुनि सिखा रहे हैं, और वो क्या सिखा रहे हैं? स्तुति देवी वो हर समय कुंवारी रहती है. बहुत प्रसिद्ध ये फ्रेज है कि स्तुति देवी अर्थात गुणगान, प्रशंसा. तो स्तुति देवी हर समय कुंवारी क्यों रहती है? क्योंकि जो चाहते हैं स्तुति देवी से शादी करना, जो स्तुति देवी से विवाह करना चाहते हैं, स्तुति देवी उनसे भागती फिरती है दूर, और जिनसे स्तुति देवी शादी करना चाहती है वो स्तुति देवी से भागते फिरते हैं दूर। तो इसलिए विश्वामित्र मुनि सिखा रहे हैं कि स्तुति देवी ये एक ऐसी स्त्री है कि आज दिन तक इसे कोई वर नहीं मिल पाया। आज दिन तक स्तुति देवी जो है वो कुंवारी रही, कुंवारी रहेगी। कोई शादी .com, कोई मैरिज बोर्ड स्तुति देवी की शादी नहीं करा सकता। ये है स्तुति देवी की तकदीर। अब शतानंद ऋषि ये पूरी स्टोरी, कौन सी स्टोरी, विश्वामित्र मुनि की पूरी स्टोरी सुनाने जाने वाले हैं राम और लक्ष्मण को। प्रमुख जो श्रोता कौन है, राम और लक्ष्मण, तो उनको सुनाने जाने वाले हैं। अब ये बहुत ही एक सेंसिटिव स्टोरी है सुनाना, वो भी विश्वामित्र मुनि के सामने। आपको समझ में आएगा जब ये स्टोरी आप लोग सुनना प्रारंभ करोगे, क्योंकि अभी तक विश्वामित्र मुनि पूरा ट्रांसफॉर्म्ड आप देख रहे हो उनको, लेकिन उनके ट्रांसफॉर्मेशन से पहले की जो उनकी स्टोरी है वो अब शतानंद ऋषि सुनाने वाले हैं। तो यहां पर आप थोड़ा अंदाजा लगाइए, कल्पना कीजिए कि कितना सेंसिटिव वो माहौल होगा जहां पर विश्वामित्र मुनि का जो पास्ट, एकदम अलग अलग प्रकार के साजिश, षड्यंत्र, पावर प्ले, इन सब से भरा हुआ, और ऐसे पास्ट को ग्लोरीफाई करके प्रेजेंट करना है। तो इसमें जो डेलिकेट सब्जेक्ट मैटर क्या है, शतानंद ऋषि वॉज सो केयरफुल इन स्पीकिंग अबाउट विश्वामित्र मुनिज पास्ट दैट ही शुड नॉट प्रेज हिम इन एन अनवॉरंटेड वे एंड देर शुड नॉट बी ओवर क्रिटिसिज्म, क्योंकि क्रिटिसिज्म है उनके पास्ट में बहुत, तो ओवर क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए और अनड्यू प्रेज नहीं होना चाहिए। ये दोनों का डेलिकेट बैलेंस शतानंद ऋषि मेंटेन कर सुना रहे हैं। तो ये जो थर्ड लेसन हम फिर शतानंद ऋषि से सीख रहे हैं इस एपिसोड में, लर्निंग द आर्ट ऑफ रीइंफोर्सिंग फेथ रादर देन ब्रेकिंग समवन्स फेथ। अक्सर जब हमारे सामने सत्य और असत्य इसके विषय में पूछा जाता है तो हम सब अवश्य ही एक नैतिक भक्त होने के नाते क्या कहेंगे कि सत्य के मार्ग का पालन करना, सत्यमेव जयते, असत्य की पराजय हो सत्य की विजय हो। परंतु ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार या साइकोलॉजिस्ट के अनुसार मोर डेडलियर देन फॉल्सिटी इज ट्रूथ विच इज मिसप्रेजेंटेड। ट्रूथ विच इज पुट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इज मोर डेडलियर देन इवन स्पीकिंग लाइज। कोई झूठ बोल रहा है वो तो बद है, परंतु कोई सत्य को तोड़ मरोड़ के प्रेजेंट करता है वो बदतर, बद से बदतर। एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा। श्रील प्रभुपाद के एक शिष्य, उन्होंने गलती से प्लेन में खाया, उसके अंदर मशरूम्स थे। अब मशरूम्स हम लोग नहीं खाते हरे कृष्णा में, तो गलती से उन्होंने मशरूम्स खा लिया, पता नहीं हिंदी में क्या कहते हैं उसको, आप लोग जानते हैं ना मशरूम्स क्या होते हैं, तो मशरूम्स खा लिए उन्होंने गलती से प्लेन में। तो उन्होंने श्रीला प्रभुपाद को लेटर में लिखा, प्रभुपाद आई एम सो सॉरी बाय मिस्टेक, यू नो देर वॉज मशरूम इन दिस सैलड एंड आई डिडंट नो, एंड आफ्टर आई हैड इट आई गॉट टू नो दैट देर वॉज मशरूम इन द सैलड, प्रभुपाद प्लीज व्हाट शुड आई डू, ऐसे करके बहुत लंबा चौड़ा लेटर, अपोलोजेटिक लेटर था, क्षमा मांग रहे हैं अलग अलग। तो प्रभुपाद ने खाली एक लाइन में लिख दिया, इट्स ओके। प्रभुपाद ये बोले कि तुमको अपने आप को फांसी चढ़ाने की जरूरत नहीं है। ये प्रभुपाद कॉन्टेक्स्ट क्या था, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग क्या था, प्रभुपाद ने खाली दो वर्ड्स लिखे, इट्स ओके। क्या किया इन्होंने, प्रभुपाद हैज सेड मशरूम्स आर ओके, आई हैव रिटन प्रूफ, मेरे पास रिटन प्रूफ है कि प्रभुपाद ने कहा है मशरूम्स सब लोग खा सकते हैं। कोई पूछेगा कहां है भाई लेटर, हां प्रभुपाद को जाके पूछो, प्रभुपाद आपने ये लेटर लिखा, प्रभुपाद क्या कहेंगे भाई, क्या कहेंगे प्रभुपाद, हाँ मैंने लिखा है, बस प्रभुपाद ने बोला है ना, प्रभुपाद उवाच मशरूम्स आर ओके। दीज काइंड ऑफ पीपल आर मोर डेडलियर देन समवन हु इज आउटराइटली अ सिनर। तो यहां शतानंद ऋषि, उनकी सेंसिटिविटी देखिए कि उन्होंने जिस तरीके से ये पूरी कहानी प्रेजेंट करी है पूरे सेंसिटिविटी के साथ। क्या सेंसिटिविटी, कि राम और लक्ष्मण का जो उनकी जो श्रद्धा है उनके गुरु में वो रीइंफोर्स होनी चाहिए, टूटनी नहीं चाहिए। So one should be very careful that in devotee community, are we reinforcing the faith of devotees or are we breaking the faith of devotees? This is the lesson Shatananda Rishi is teaching. Ab Shatananda Rishi, inhone जैसे हमने कहा विश्वामित्र मुनि इनके इक्वल हैं, और विश्वामित्र मुनि का गुणगान अपने डिसाइपल्स के सामने, विश्वामित्र मुनि के डिसाइपल्स के सामने कर रहे हैं। ये सेटिंग आप ध्यान में रखना कि कौन कौन है वहां पर। दोनों गॉड ब्रदर्स इक्वल हैं और दोनों के डिसाइपल्स हैं वहां पर, और एक इक्वल गॉड ब्रदर दूसरे इक्वल गॉड ब्रदर का गुणगान कर रहा है अपने डिसाइपल्स के सामने। तो ये फोर्थ लेसन शतानंद ऋषि सिखा रहे हैं, योर एनवी इज एक्सपोज्ड नॉट इन फ्रंट ऑफ योर जूनियर्स, नॉट इन फ्रंट ऑफ योर सीनियर्स, बट योर एनवी इन योर हार्ट विल बी एक्सपोज्ड इन फ्रंट ऑफ योर इक्वल्स। क्योंकि अधिकांश ये देखा गया है कि जो बराबरी का होता है उसके साथ ही ईर्ष्या होती है, जो हमसे बहुत प्रगत है हम कभी उनसे ईर्ष्या नहीं करेंगे, बल्कि उनको हम आदरणीय मानते हैं कि हाँ भाई गुरु जो हैं, गुरु उनके गुण कभी कोई उनके गुणों तक नहीं पहुंच सकता। परंतु अपना ही गॉड ब्रदर, अपना ही गॉड, अपनी ही गॉड सिस्टर इक्वल जो है, और सेम डिपार्टमेंट में अगर सेम सेवा सेम डिपार्टमेंट और सब कुछ इक्वल है, एक ही साल भक्ति में आए, एक ही दिन दीक्षा हुई, सब कुछ सेम होते होते तो धीरे धीरे अंदर ईर्ष्या जागृत होती है। तो अब वो कथा शुरू करते हैं, विश्वामित्र मुनि की स्टोरी सुनाना शुरू करते हैं कि विश्वामित्र मुनि जब वो राजा थे और इतने बड़े पराक्रमी सम्राट, तो एक दिन विश्वामित्र मुनि निकले शिकार। तो ये देखिए, हमारे वैदिक ग्रंथों में बहुत से रोमांचक घटनाएं हुई हैं जब राजा शिकार के लिए निकलते थे। तो ये हंटिंग और हंटिंग के साथ एक नया एपिसोड ऐड हो जाना बहुत कॉमन। तो हम अगला लेसन विश्वामित्र मुनि से सीखते हैं कि विश्वामित्र मुनि अक्सर जो ऐसे राजा शिकार के लिए क्यों निकलते थे, एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज ऑलवेज बेटर देन बुकिश नॉलेज। क्योंकि केवल तुम बैठ बैठ कर पोथियां पढ़ लो और तुम्हें व्यावहारिक ज्ञान कुछ नहीं है, तो व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए ये ऐसे राजा बाहर निकलते थे, भ्रमण करते थे, शिकार पर निकलते थे, ताकि उनको केवल बुकिश नॉलेज ना हो बल्कि उनको एक्सपीरियंशियल नॉलेज हो, जिसके द्वारा वो अपने प्रजा का संरक्षण और अच्छी तरीके से वो कर सके। और जैसे वो अब एक पर्टिकुलर वन में, जंगल में शिकार के लिए निकले हुए थे, बहुत से उनकी पूरी सेना निकली हुई थी उनके साथ, हजारों की तादाद में उनकी सेना उनके साथ थी और उनके खुद के पुत्र भी उनके साथ थे। तो यहां विश्वामित्र मुनि देखते हैं इस एक जंगल में एक छोटी सी कुटिया। अब आप जान गए होंगे कि ये कुटिया किसकी थी, ये कुटिया वशिष्ठ मुनि। तो हमारे सेकंड हीरो, अब इनकी एंट्री हो रही है। तो वशिष्ठ मुनि की ये कुटिया। तो विश्वामित्र मुनि ने जब देखा कि कोई साधु पुरुष की ये कुटिया है, तो कुटिया देखकर ही दूर से ये समझ गए कि यहां पर कोई तपस्वी साधु ऋषि रहते होंगे। तो उन्होंने अपने पुत्रों को और अपनी सेना को कहा कि तुम लोग यहां पर रुको, मैं उनसे आशीर्वाद लेकर उनको प्रणाम कर आता हूं। ये संस्कार थे, ये राजाओं के संस्कार थे पहले के। तो कुटिया देखकर वो गए अपना प्रणाम देने के लिए, आशीर्वाद मांगने के लिए। तो जब वो वहां पर पहुंचते हैं, तो वहां पर वशिष्ठ मुनि देखते हैं कि हमारे प्रांत के राजा आए हैं मेरी कुटिया में। तो वो कहते हैं कि आप बैठिए, मैं आपका कुछ सत्कार करना चाहूंगा। तो कुटिया को देखकर विश्वामित्र मुनि सोचते हैं कि ये बेचारे तपस्वी, पता नहीं खुद के पास भी कुछ कंदमूल हैं कि नहीं खाने के लिए, मुझे क्या देंगे, तो मैं इनको परेशान ना करूं। तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, कुछ आप तकलीफ मत उठाइए, मैं केवल आपको प्रणाम करने आया था, आपका आशीर्वाद मिल गया, अब मैं जा। नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे, आप हमारे राजा हैं, आप यहाँ पे बैठिए, आपका सत्कार हम करना चाहेंगे। तो वशिष्ठ मुनि पूछते हैं कि और भी कोई है आपके साथ? तो विश्वामित्र मुनि कहते हैं कि मेरी तो पूरी सेना है, मैंने उनको दूर खड़ा कर रखा है, तो आप उनको क्यों नहीं लेकर आए, उनको भी लेकर आइए यहां पर। तो विश्वामित्र मुनि सोच रहे हैं कि उनको पहले डाउट था कि मेरे लिए इनके कुटिया में कुछ है क्या देने के लिए, अब इनका कॉन्फिडेंस देखिए कि ये मेरी पूरी सेना को इनविटेशन दे रहे हैं। तो इनको लगा कि शायद वशिष्ठ मुनि को अंदाजा नहीं है मेरी सेना कितनी बड़ी, मेरे पुत्र ही 100 हैं, वही पूरी एक सेंचुरी है। तो उन्होंने कहा, देखिए मैं आपको फिर एक इत्तला करना चाहता हूं कि सैकड़ों में, हजारों की तादाद में है मेरी सेना। वशिष्ठ मुनि ने कहा कि मैं आपको अनुरोध कर रहा हूं, आपकी पूरी सेना, आपके पुत्र 100 सबको यहां पर लेकर आइए, मैं उनकी सेवा करना चाहूंगा। तो विश्वामित्र मुनि इतना जब आग्रह सुना, तो उन्होंने कहा ठीक है भाई। तो उनको लग रहा था कि हो सकता है कुछ चना कुरमुरा खिलाएंगे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा इनके पास देने के लिए, चना कुरमुरा होगा। तो जाके सेना को कहे कि भाई थोड़ा हमारा जाना डिले हो गया है, थोड़ा आ जाओ अंदर, ये जो महंत हैं वो बहुत आग्रह कर रहे हैं, कुछ चना कुरमुरा खिलाना चाहते हैं, तो थोड़ा थोड़ा तुम लोग मान रखने के लिए आ जाओ, चलो चलो आ जाओ सब, जल्दी जल्दी निपटा लेंगे। ऐसे करके सबको बुलाया गया। और वहां पर जब वशिष्ठ मुनि ने इनका सत्कार किया, सबको पंगत में बिठाया, तो पंगत में बिठाकर अब सर्विंग कौन करेगा और सर्विंग क्या करेंगे, कौन करेगा और क्या करेंगे, सोचो। एक यात्रा हम लोग निकालते हैं कितना एडवांस पार्टी, यहां पर बिना बताए हाँ विश्वामित्र मुनि देख रहे हैं, कोई किचन भी नहीं दिख रहा है यहां पर, कोई रसोईया भी नहीं दिख रहा है, रसोई नहीं तो रसोईया कहां से दिखेगा। लेकिन कॉन्फिडेंस वशिष्ठ मुनि का, सबको बिठाया और उनकी एक गाय थी जिसका नाम था शबल, और ये कामधेनु गाय, कामधेनु गाय का अर्थ है कि वो केवल दूध नहीं देती। इमेजिन करो कामधेनु गाय जिसके थनों से केवल दूध नहीं निकलता, आपको यदि उसके थनों से पनीर की सब्जी चाहिए तो पनीर की सब्जी आएगी, आपको समोसा चाहिए तो समोसा आएगा, रबड़ी तो रबड़ी, हाँ पूड़ी हलवा ये सब कुछ उसके थनों से निकलता। तो यहां अब उस शबला गाय की सहायता से वशिष्ठ मुनि ने, मतलब कोई इच्छामणि केटरर्स, मेरे ख्याल से नासिक का सबसे प्रसिद्ध है, तो उसको आप लाखों करोड़ों संख्या में गणना कर लो उसकी, उससे कई गुना ज्यादा, ऐसा उत्कृष्ट भोजन जब विश्वामित्र मुनि ने ये देखा कि ये सब कुछ आ कहां से रहा है, मैं कहां पर हूं, क्या ये सपना है, अपने आप पर चुटकी मारी, देखा नहीं मैं जागृत हूं। और सभी वहां पर सैनिक, उनको ज्यादा लेना देना नहीं था कहां से आ रहा है, वो अपना कई बार जब ब्रह्मचारी को फीस्ट पे बुलाया जाता है तो उनकी भी स्थिति ऐसी होती है, वो ज्यादा खोजबीन नहीं करते कि रसोई में कितने कुक हैं, कब से आपने बनाना शुरू किया, लाते जाओ लाते जाओ, वो एकदम फोकस्ड होते हैं कि हम बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करेंगे पेड़ को गिनने में, गुठलियों को गिनने में, ना हमको पेड़ में इंटरेस्ट है ना गुठलियों में इंटरेस्ट है, हमको केवल आम में इंटरेस्ट है। तो वैसे ये बाकी सारे जो सैनिक, इनके सामने जब इतना बड़ा फीस्ट और भौचक्का करने वाली बात क्या थी, अब जनरली हम जब बड़ा फीस्ट बनता है, जानकीनाथ प्रभु को आप पूछ सकते हैं, तो एक मेन्यू रहता है सबके लिए, है ना, यदि सांबर चावल है तो सबके लिए सांबर चावल, खिचड़ी है सबके लिए खिचड़ी। परंतु यहां पर हरेक सैनिक को जो पसंद था उसके लाइकिंग के अनुसार उसके लिए स्पेशल मेनू था। यदि एक सैनिक को बटाटा पोहा अच्छा लगता है तो उसके लिए बटाटा पोहा था, अगर उसके बगल वाले सैनिक को बिना बटाटा का पोहा अच्छा लगता है तो उसके पोहा में बटाटा नहीं। तो विश्वामित्र मुनि ने जब ये देखा तो विश्वामित्र मुनि, जैसे हिंदी में कहते हैं ना, सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। उन्होंने आज दिन तक ऐसा ऐश्वर्य का प्रदर्शन नहीं देखा था, नहीं देखा आज तक उन्होंने। तो विश्वामित्र मुनि उन्होंने पूछा कि सोर्स क्या है, सोर्स बताओ, सोर्स क्या है। तो जब पता चला कि ये शबल गाय, तो विश्वामित्र मुनि वो भोजन ग्रहण कर रहे हैं और वो शबल गाय को अपनी नजरों से देख रहे हैं। तो खाते खाते उस गाय की ओर देख रहे हैं कि ये ऐसी गाय तो मैंने आज दिन तक न तो सुनी न देखी। पूछा क्या राज है इस गाय का। तब वशिष्ठ मुनि वो कहते हैं कि समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई है ये गाय। कहां से? समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई ये गाय है शबला। तो विश्वामित्र मुनि अब खाते खाते क्या सोचने लगे कि ये गाय तो मेरे पास होनी चाहिए। यहां पर हम ये समझ रहे हैं कि जब हमारे सामने कोई प्रलोभन आता है, तो प्रलोभन जब हमारे सामने आता है तो हमारा चरित्र वो परखा जाता है। अब तक विश्वामित्र मुनि वशिष्ठ मुनि का आदर कर रहे हैं, अब धीरे धीरे उनके मन में वशिष्ठ मुनि के प्रति ईर्ष्या जागृत होने लगी कि ये गाय इस छोटी सी कुटिया में, ये एक साधारण सा एक तपस्वी, इसके पास क्या कर रही है, ये गाय तो मेरे पास होनी चाहिए। तब विश्वामित्र मुनि ने वशिष्ठ मुनि से सीधा कह दिया कि मैं बदले में आपको 100,000 दूध देने वाली गाय दूंगा। तुरंत ऑफर क्या दिया, बदले में 100,000 दूध देने वाली गाय, आप ये गाय मुझे दे दो। तो यहां पर जब वशिष्ठ मुनि ने यह सुना तो वो मुस्कुराने लगे, वो बोले आप बहुत गलत समझ रहे हैं, मैं इसे पूजनीय मानता हूं, ये कोई व्यापार की वस्तु नहीं है मेरे लिए। तो फिर विश्वामित्र मुनि उन्होंने ऑफर को रेज किया, सोचा कि शायद ये ऑफर इनको ज्यादा प्रलोभित नहीं कर पाया, तो ऑफर को रेज किया। तो ऑफर, रेज्ड ऑफर क्या था, 14,000 हाथी, 800 स्वर्ण और रत्न जड़ित रथ, असली सोने का बना हुआ, कितने, 14,000 हाथी, 800 ऐसे रथ, 11,000 घोड़े और 1 करोड़ दूध देने वाली गाय। अब बताओ कैसा लगा ऑफर। वशिष्ठ मुनि फिर मुस्कुराने लगे। वशिष्ठ मुनि ने जब मना कर दिया तब विश्वामित्र मुनि अब क्रोधित होने लगे। तब यहां पर क्या समझ में आ रहा है, देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन बीइंग ग्रेटफुल एंड बीइंग हेटफुल। वही विश्वामित्र मुनि कुछ समय पहले स्वयं गए वशिष्ठ मुनि की कुटिया में अपना प्रणाम अर्पित करने के लिए, उनसे आशीर्वाद मांगने के लिए, उनको पूजनीय मान रहे थे, और वही विश्वामित्र मुनि वही वशिष्ठ मुनि हैं। विश्वामित्र मुनि अब उनको जान से खत्म करने पर उतारू हो रहे हैं। तो यहां पर क्या समझा जाता है, बहुत बार ये देखा गया है कि जो आपके जीवन में पूजनीय होता है, कब तक पूजनीय होता है, जब तक कि वो मेरे मता अनुसार काम करे। जैसे ही मेरे मता अनुसार काम करना बंद करता है तो वो पूजनीय दंडनीय हो जाता है। पूजनीय दंडनीय हो जाता है, ये केवल राइमिंग नहीं है, ये सच्चाई है। वही जिसको मालाएं अर्पित होती हैं, वही जिसके ऊपर तालियां मारी जाती हैं फिर गालियां, और वो फूलों की माला के बदले जूते चप्पलों की माला। तो पहले क्या बोला जाता है, साधु संती ये ते घरा, तो दिवाली दसरा। कब तक वो साधु संत हैं, जब तक कि मेरे मतानुसार वो सब कुछ कर रहे हैं। तो मेरे मतानुसार साधु संती ये ते घरा तो दिवाली दसरा, और जब वो साधु उसके मत अनुसार काम नहीं करता, आता ये देतो तुझा तोंडा कचरा, दिवाली दसरा तुझा तोंडा कचरा। तो वो सारा साधु संत गया नाली में। अब या तो तू या मैं, ये था। पता नहीं मुझे वो राइमिंग कुछ याद आ गया। आणि थोबाडीत उस्तरा। तोंडात कचरा, थोबाडीत उस्तरा। तो ये हाल हुआ अब अचानक, चैनल चेंज। अब तक वांछा कल्पतरुभ्यश्च, राधानाथ महाराज अपने एक प्रवचन में बता रहे थे, ब्रह्मचारी की सिचुएशन बता रहे थे कि ब्रह्मचारी आश्रम में होता है, ब्रह्मचारी का एक दूसरे से कभी कभी जमता नहीं है, भक्तों का नहीं जमता, होता है कभी कभी कि नहीं, नासिक में नहीं होता ना। तो बता रहे थे, राधानाथ महाराज बता रहे थे कि पहले होता है इनिशियली वांछा कल्प, और फिर जब उन दोनों के बीच में जमता नहीं है, पंच टिल दी कल्प। पहले है वांछा कल्प, तो महाराज बोले वंस दे डोंट गेट अलोंग देन आई विल पंच यू टिल दी कल्प गेट्स ओवर। तो पहले दंडवत, फिर दंडे से मारूंगा। अब सो वेरी थिन लाइन। तो जब ये अब इनका वार्तालाप चल रहा है तो वशिष्ठ मुनि बार बार कह रहे हैं कि आप मेरा नहीं, आप इस गाय का अपराध कर रहे हैं, क्योंकि मेरे लिए ये पूजनीय है, मेरे आध्यात्मिक कार्यों के लिए, और जो मैं पूरे समाज की समृद्धि के लिए आध्यात्मिक कार्य कर रहा हूं उसके लिए मैंने इस शबल गाय को रखा हुआ है। ये नहीं कि मैं स्वयं अपने लिए लूची चीनी पूड़ी रबड़ी ये सब कुछ खाने के लिए इसको रखा हुआ हूं, ये मैं समाज सुधार के लिए इसको रखा हुआ हूं, और तुम ये अपराध कर रहे हो बोल के कि इसके बदले में तुम कुछ दोगे। इसको तुमने केवल एक व्यवसाय व्यापार की वस्तु बना दी। तो विश्वामित्र मुनि हमें क्या सिखा रहे हैं, When people are treated as commodities, then they are given price tags. When people are treated as commodities, then they are put with price tags. और आजकल हम यही देखते हैं कि कैसे वो जो फेमस हम लोग हमारे गीता कोर्स में भी कोट यूज करते हैं, We are living in this modern day world where things are loved and people are used. हमारे एक भक्त हैं इस्कॉन के, लंदन में रहते हैं, तो उनके घर में मैं रहा था 2 दिन और कार्यक्रम भी किया मैंने। तो मैंने पूछा आप क्या करते हैं, तो उन्होंने कहा कि वो उन्होंने होटल मैनेजमेंट किया है और अब एक एवरी नाम बहुत बड़ी कोई कंपनी है लंदन में, वो 5-star ओल्ड एज होम्स उनके ब्रांचेस है ऑल ओवर यूके, ओल्ड एज होम्स लेकिन 5-star ओल्ड एज होम्स। तो मैंने पूछा ये क्या है 5-star ओल्ड एज होम, तो उन्होंने कहा कि मतलब 80% जो वृद्ध हैं उस देश के वो लोग प्रिफर करते हैं ओल्ड एज होम में रहना अपने घर के बजाय, खुद ओल्ड एज होम में रहना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि घर पर कोई है नहीं, बच्चे तो कभी छोड़कर चले गए, वो लोग कभी पूछते नहीं देखते नहीं, तो पैसा है इनके पास तो ये अपने खुद का घर किराए पे छोड़ते हैं और उस किराए को यहां पर इस ओल्ड एज होम में देते, क्योंकि यहां पर कम से कम इनको कोई कंपनी तो मिलेगी, किसी के साथ बात कर सकें, कोई व्यवहार हो, तो इसलिए वो वहाँ पर जाना पसंद कर, और सब कुछ है वहाँ पर, मेडिकल फैसिलिटी है, खाने के लिए उनको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ प्रोवाइडेड है, लेकिन 5-star कीमत है और 5-star फैसिलिटीज़ है, तो ये लोग प्रेफर करते हैं ओल्ड एज होम्स में जाके रहना। तो ये बहुत बड़ा बिजनेस है, तो ये उसकी हाउसकीपिंग को देखते हैं ये ओल्ड एज होम्स के, क्योंकि 5-star ओल्ड एज होम्स हैं। तो ये बता रहे थे कि ऐसे बहुत से पाश्चात्य कंट्रीज में हैं, जर्मनी में एक है इस प्रकार का, तो उसमें 1-star, 2-star, 3-star, 5-star ऐसे ऐसे 5-star ओल्ड एज होम्स हैं कि वो व्हीलचेयर पे, अगर कोई इतना बूढ़ा है कि व्हीलचेयर पे है तो पूरा व्हीलचेयर शावर में जा सकता है उसका, उसके लिए वो लग्जरी है कि पूरा व्हीलचेयर शावर में जा रहा है। और ये ऐसे ओल्ड एज होम्स हैं जहां पर इतनी भीड़ हो रही है कि पर अगर उनको आप पेशेंट कहो तो पर पेशेंट को दिन में नर्स उनसे बात करने जाती है, तो पर पेशेंट नर्स को अनुमति है केवल 3 मिनट वो बिता सकती है बस। और ये लोग तरसते हैं, ये लोग कहते हैं कि हम आपको जो मांगो हम पैसे देंगे, प्लीज। वो नर्स को कहते हैं स्पेंड 3 more minutes विथ मी। ये अकेलापन है। एक बार एक पुत्र वो अपने पिताजी को ओल्ड एज होम में डालने जा रहा था, अपने पिताजी को कहा ओल्ड एज होम में डालने जा रहा था, तो रास्ते में पिताजी ने पूछा कि मुझे प्यास लगी है, मुझे कुछ पीना है। तो इसने सोचा कि चलो लास्ट में कम से कम मैं अपने पिताजी को कुछ ऐसी तो सेवा कर दूं, कुछ उनको अच्छा पीने के लिए दे दूं। तो उसने एक पार्क के बेंच पर अपने पिताजी को बिठाया और कहा कि मैं आपके लिए जूस लेकर आता हूं, पानी के आपको जूस पिलाऊंगा, फाइनली एक लास्ट सेवा आपकी मैं कर लूं। तो जूस लाने गया, पार्क के बेंच पर बिठा दिया अपने पिताजी को, और जब जूस लेकर आया तो पिताजी फूट फूट के रो रहे थे। तो ये समझ गया कि अभी मैं इनको ओल्ड एज होम छोड़ रहा हूँ, घर से दूर, मुझसे दूर, तो इसलिए रो रहे होंगे। तो पिताजी आप रोइए मत, मैं हर महीने मिलता रहूँगा आपको, आऊँगा मैं आपकी आपका सुख दुख पूछने के लिए, मैं आऊँगा, आप रोइए मत। तो पिताजी कहे मैं उसलिए नहीं रो रहा हूँ। तो क्यों रो रहे हो? मैं इसके लिए रो रहा हूँ कि जब इतने साल पहले मैं अपने पिताजी को ओल्ड एज होम छोड़ने गया था तो मैं इसी पार्क बेंच पर अपने पिताजी को बिठाकर जूस पिलाया था। जिस पार्क बेंच पर तुम मुझे बिठाए हो, इसी सेम पार्क बेंच पर मैंने अपने पिताजी को बिठाया था, इसलिए मुझे रोना आ रहा है। वो लड़का अपने पिताजी को यू टर्न मारकर ले गया घर पर। यहां पर पॉइंट क्या है? When people are treated as commodities, तो जब व्यक्तियों को वस्तु के रूप में देखा जाए तो वास्तविकता खो जाती है। वस्तु वो जो दृष्टिकोण है हमारा, वास्तविकता को छीन लेता है। तो ये अब जब वशिष्ठ मुनि ने मना कर दिया कि नहीं, मैं कतई ये जो तुम्हारा प्रपोजल है ये सुनने योग्य भी नहीं है, मानने योग्य तो छोड़ दीजिए, ये सुनने योग्य भी नहीं है, तो साफ साफ इनकार कर दिया वशिष्ठ मुनि ने, साफ साफ इनकार कर दिया। जब इनकार कर दिया तब विश्वामित्र मुनि सोचे कि अब मैं जोर जबरदस्ती कर कर ले जाऊंगा, ये साधारण से साधु की हिम्मत कि मुझ जैसे सम्राट कौशिक को मना कर रहा है, ये इसकी जरूरत? अरे ये है क्या, ये छटांग बग कुटिया में रहता है, ये कौन है ये? तो अब आग बबूला होते हुए वो गाय को खींचने लगे, शबल गाय को खींचने लगे। तो यहां पर शबल गाय वो हमको लेसन सिखा रही है, प्रॉस्पेरिटी कैन नाइदर बी फोर्सफुली ड्रैग्ड इनटू एनीवन्स लाइफ नॉर ड्रैग्ड आउट ऑफ एनीवन्स लाइफ। कोई अगर जबरदस्ती ऐश्वर्य या यश को अपने जीवन में लाना चाहता है तो जबरदस्ती से, जैसे हमने कहा स्तुति, स्तुति कन्या वो हर समय कन्या रहती है, कोई कन्या दान नहीं करने वाला है उसका, तो वैसे प्रॉस्पेरिटी कैन नेवर बी। रावण इस कैटेगरी का था। रावण यहां पर नासिक में उसने क्या प्रयास किया कि वो जबरदस्ती, प्रॉस्पेरिटी कौन है? सीता मैया। सीता मैया को जबरदस्ती अपना बनाना चाहता था रावण। और यहां इसी क्षेत्र में नासिक में जब जटायु ने रोका रावण को, तो जटायु ने रावण को क्या कहा? जटायु ने कहा रावण, अब देखो लड़ते समय जटायु रावण को कुछ सुविचार भी सुना रहे हैं, कुछ ज्ञान दे रहे हैं ताकि रावण सुनकर वो रुक जाए, क्योंकि जटायु जानते थे कि शारीरिक दृष्टिकोण से ये तो मुझसे बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, मैं शारीरिक रूप से विजय प्राप्त, इसके ऊपर विजय नहीं हो पाऊंगा, परंतु कम से कम मैं इसे कुछ अच्छा ज्ञान दे दूं। तो जटायु उदाहरण देते हैं, सुनने योग्य उदाहरण है ये। जटायु रावण को उदाहरण देते हैं कि सीता रबड़ी के समान है, शुद्ध रबड़ी के समान है, और रबड़ी वो जीभ के लिए तो बहुत टेस्टी लगती है जब जीभ पर पड़ती है रबड़ी, परंतु यदि किसी के पेट में पाचन की शक्ति नहीं है तो जब वो रबड़ी अंदर जाती है तो वो उसको बीमार बनाती है। बहुत सुंदर उदाहरण दिया उन्होंने कि सीता उस शुद्ध रबड़ी के समान है जिसको केवल राम ही पचा सकते हैं। तू तो मरीज है रावण, तू तो पहले से ही मरीज है, तेरी तो जठराग्नि पहले से ही मरी हुई है, उसके ऊपर तू रबड़ी खाना चाहता है। अरे तू ऐसे ही मरेगा। ये जटायु के शब्द हैं, तो अगली बार जब आप ताकेत जाओ जटायु इनका दर्शन करो तो ये उदाहरण याद रखना। जटायु ने लड़ाई करते समय ये उदाहरण दिया था रावण को कि तू जो करने की कोशिश कर रहा है ना रावण, वो तेरे स्वयं की हत्या तू कर रहा है, आत्महत्या तू कर रहा है। तो अब यहां पर विश्वामित्र मुनि जो कि खींचने लगे इस शबल गाय को, तो विश्वामित्र मुनि वो क्या कर रहे हैं, जैसे कि जोर जबरदस्ती इस समृद्ध गाय को कामधेनु को अपना बनाना चाहते हैं। तो वो लेसन सिखा रहे हैं, अगला नौवां लेसन, When ambition crosses the fine line of ethics, then it turns into greed. महत्वाकांक्षी होना बुरी बात नहीं है, ambitious होना ये गलत नहीं है। Yes, we should be ambitious. But when ambition crosses the fine line of ethics, जब तुम्हारे महत्वाकांक्षी होने कि जो लाइन है कंट्रोल लाइन, कौन सी कंट्रोल लाइन, नैतिकता की कंट्रोल लाइन, जब उसको क्रॉस कर देते हो तो वो महत्वाकांक्षी नहीं कहलाता, वो क्या कहलाता है, लोभी, वो व्यक्ति लोभी कहलाता है। तो वशिष्ठ मुनि मानो विश्वामित्र मुनि को ये कह रहे थे कि भाई तुम्हें अगर ये प्रसाद इतना ही पसंद आया है, हाँ तुम्हें ये प्रसाद इतना ही पसंद आया तो तुम रोज आया करो, रोज मैं तुम्हें प्रसाद खिला दूंगा। जैसे मान लो कि कोई किसी के घर प्रसाद के लिए गया है और उसको प्रसाद इतना पसंद आया, इतना पसंद आया प्रसाद, मुझे प्रसाद बहुत पसंद आया, किसने बनाया प्रसाद, मेरी पत्नी ने बनाया, तुम्हारी पत्नी मेरी, कल्पना करो ये वो स्थिति हो रही है कि उसको बेचारे को हार्ट अटैक आ जाएगा, पता नहीं कलयुग में दे भी दे कलयुग की ये भी स्थिति है, कुछ बोला नहीं जा सकता कलयुग में। जैसे एक बार एक व्यक्ति ने, उसकी शादी नहीं हो रही थी तो उसने पेपर में इश्तहार डाला डायरेक्टली, मतलब इतना वो ज्यादा हेल्पलेस हो गया, इतना ज्यादा डेस्परेट हो गया, तो उसने इश्तहार डाला, कुछ नहीं खाली इतना बड़े अक्षरों में डाला वाइफ वांटेड, तो लंबी लाइन लग गई उसके घर के आगे, टेक माइन। तो कल्पना करो कि कोई किसी के घर पे प्रसाद के लिए जा रहा है, उसको प्रसाद इतना पसंद आया कि मुझे प्रसाद नहीं प्रसाद बनाने वाली चाहिए, आ जाओ। दिस इज कॉल्ड ग्रीड। व्हेन यू क्रॉस द लाइन ऑफ एथिक्स इन द नेम ऑफ बीइंग एम्बिशियस, दैट इज कॉल्ड ग्रीड। तो अब वशिष्ठ मुनि वो विश्वामित्र मुनि को ये बताना चाहते थे कि ये जो गाय है जिसको मैंने अपने तपोबल से स्वयं साक्षात भगवान विष्णु ने ये गाय ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ को दी थी। अच्छा हाँ, एक और विश्वामित्र मुनि ने जो आर्ग्यूमेंट क्या पेश किया, विश्वामित्र मुनि आर्ग्यूमेंट पेश ये करते हैं कि मैं राजा हूं और जो भी इस पूरे मेरे प्रांत में जो भी व्यक्ति है, प्रॉपर्टी मेरी है, मेरी प्रॉपर्टी हुई ना, मैं राजा हूं तो ये प्रॉपर्टी मेरी हुई है, ये गाय तुम मेरे हो, ये गाय मेरी। तो वशिष्ठ मुनि ने बहुत सुंदर, वशिष्ठ मुनि कहे कि हो ही नहीं सकता, ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है, कैसे मेरी प्रॉपर्टी कैसे नहीं है बताओ। तो उन्होंने कहा थोड़ा ध्यान से देखो इस गाय को, तो गाय जो है वो धरती को स्पर्श ही नहीं कर रही थी, वो गाय धरती से कुछ इंच ऊपर थी, शी वॉज लाइक फ्लोटिंग। तब वशिष्ठ मुनि ने कहा ये कोई साधारण इस जगत की गाय नहीं है, इसलिए ये धरती को स्पर्श ही नहीं करती है, ये समुद्र मंथन से निकली हुई डायरेक्टली भगवान विष्णु ने मुझे भेंट के रूप में दी है, ये मेरी भी प्रॉपर्टी नहीं है, मैं केयर टेकर हूं। तो ये आर्ग्यूमेंट फेल हो गया विश्वामित्र मुनि का कि भाई ये मेरे राज्य की धरती को स्पर्श ही नहीं कर रही है गाय, तो ये मेरा मेरी कमोडिटी या मेरी प्रॉपर्टी कैसे हो सकती है। तब फिर उसने जब जबरदस्ती खींचना प्रारंभ किया, तो अब वशिष्ठ मुनि वो ये बताना चाहते थे कि ये गाय न केवल विश्वामित्र तुम्हें इतना अच्छा भोजन खिलाई है, बल्कि अब ये बताएगी कि उसके साथ साथ ये कैसे तुमको ठीक भी कर सकती है या तुमको तुम्हारा भोजन पचा भी सकती है। इसके थनों से केवल खाने की वस्तुएं नहीं आती, अब ये खिलाएगी दूसरा कुछ। तब फिर यहां पर हम अगला जो लेसन है, दसवां लेसन, वो वशिष्ठ मुनि से सीखते हैं, ट्रू गुरु एम्पावर्स डिसाइबल टू डिफेंड हिमसेल्फ फ्रॉम अपोजिंग एलिमेंट्स। कि वशिष्ठ मुनि वो स्वयं विश्वामित्र मुनि को वहां पर परास्त कर सकते थे, परंतु वशिष्ठ मुनि ने नहीं किया, वशिष्ठ मुनि ने शबला उनके ऊपर ये उत्तरदायित्व दिया कि अब तुम अपने आप की रक्षा करो। तो अब ये शबल गाय ने अपने आप की रक्षा कैसे करी, सबसे पहले तो जब ये शबल गाय हिल नहीं रही थी तो सारे जो सैनिक हैं वो आए कि वो घसीट कर ले जाएं इस गाय को। तो जैसे ही विश्वामित्र मुनि के सारे सैनिक पूरी सेना आने लगी, तो अब केवल पूंछ से, इस गाय की पूंछ से सैनिक बाहर आने लगे, और वो भी फुल्ली आर्म्ड सैनिक बाहर आने लगे। और रामायण में वर्णन है कि इन सैनिकों के अलग अलग, जैसे होते हैं ना आर्मी के अंदर बैटालियंस होते हैं, रेजिमेंट्स होते हैं, तो वैसे ये अलग अलग रेजिमेंट्स वाले आर्मीज बाहर आ रहे हैं थनों से, वही थन से जहां से रबड़ी बाहर आई थी, अब वहां से ये सारे सैनिक कौन कौन से, पहलवस, द्रविड़स, शकस, यवनस, सवरस, पौंड्रस, हरितस, किरटस, सिन्हलस, खसस, चिवुकस, पुलिंदस, चिनस, हुनस एंड केरलस, ये सारे। कल्पना करो विश्वामित्र मुनि कोई अंदाजा नहीं था कि ये गाय केवल एक पशु नहीं है, ये सब इतने सैकड़ों की संख्या में, लाखों, करोड़ों, अरबों की संख्या में ये सैनिक आए और एक एक करके पूरी सेना को खत्म कर दिया। विश्वामित्र मुनि की पूरी सेना सफाचट। और जब विश्वामित्र मुनि की पूरी सेना सफाचट हो गई तो विश्वामित्र मुनि भौचक्का रह गए ये देखकर। अब जो 100 पुत्र विश्वामित्र मुनि के, उन्होंने देखा कि मेरे पिताजी की सेना को इस गाय से निकले हुए सैनिकों ने परास्त किया और ये गाय किसके संरक्षण में है, ये वशिष्ठ, तो ये वशिष्ठ ही जड़ है, तो जड़ से खत्म करो, इस वशिष्ठ को खत्म करो। तो अब ये 100 पुत्र विश्वामित्र मुनि के ये आक्रमण किए वशिष्ठ मुनि के ऊपर, और वशिष्ठ मुनि ने इन 100 पुत्रों को कुछ सेकेंडों में उन्होंने हुंकार यश ध्वनि निकाली। अब देखिए जो ओमकार होता है, हम सब जानते हैं कि ओमकार जो है वो हमारी आध्यात्मिक प्रगति के लिए है, परंतु वही ओमकार जब एक प्रामाणिक ब्राह्मण ब्रह्मऋषि वशिष्ठ मुनि जैसे उस ओमकार को हुंकार में परिणित करते हैं तो वो व्यक्ति को खत्म कर देता है। तो जैसे ही वशिष्ठ मुनि ने हुंकार ये ध्वनि निकाली अपने जीभ से जिह्वा से, तो ये 100 के 100 पुत्र जब आक्रमण करने के लिए आगे आ रहे थे वो केवल राख का ढेर हो गए। 100 के 100 पुत्र राख का ढेर, विश्वामित्र मुनि अब अकेले बचे। एक्साइटिंग लग रही ना स्टोरी? आप लोग इतने एक्साइटेड नहीं लग रहे हैं। अभी तो हम लोग केवल 10th पॉइंट पर हैं। कितने लेसन्स हैं? 52 लेसन्स। घबराइए मत, हम अगले सेशन में लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 10:30 हो चुके हैं, नहीं तो अगला लेसन आपसे सुनना पड़ेगा मुझे। हुंकार। पता नहीं यहां बैठे कोई हुंकार की ध्वनि ने निकालने लग जाए। तो इसके बाद का जो स्लाइड वो हम अंतिम स्लाइड लेंगे और उसके पश्चात फिर टू बी कंटिन्यूड नेक्स्ट संडे, क्योंकि ये स्टोरी मैं आपको बता दूं अभी और एक्साइटिंग होने वाली, अभी तो एक्साइटमेंट शुरू नहीं हुआ है, अभी तो असल एक्साइटमेंट बाकी है। अभी तक तो ये बस मूवी का कास्टिंग चल रहा है, कास्टिंग होता है ना, कास्टिंग चल रहा है। तो जब विश्वामित्र मुनि अब अकेले वहां पर कोई नहीं, 100 के 100 पुत्र राख का ढेर बन गए हैं, पूरी सेना वो परास्त हो गई है, तो अब रामायण में बताया है कि विश्वामित्र मुनि अकेले खड़े, हेल्पलेस। क्या स्थिति है उनकी? हेल्पलेसनेस ऑफ विश्वामित्र मुनि। बहुत सुंदर तरीके से बताया है विश्वामित्र मुनि का हेल्पलेसनेस, 4 उदाहरणों से बताया है विश्वामित्र मुनि की असहाय स्थिति, और एक एक उदाहरण दूसरे उदाहरण से ज्यादा इफेक्टिव है उसके डिस्क्रिप्शन में। सो विश्वामित्र मुनि वॉज हेल्पलेस, ही फेल्ट लाइक ओशन विदाउट वेव्स। इमेजिन, देखो रामायण में कितना सुंदर तरीके से मेटाफर्स भी जो यूज किए हैं वो कितने एग्जैक्ट मेटाफर्स हैं और कितने इफेक्टिव पावरफुल हैं। सो विश्वामित्र मुनि फेल्ट लाइक ओशन विदाउट वेव्स, ही फेल्ट लाइक सर्पेंट विदाउट फैंग्स। कोई सर्प है फनों से निकाल दिए गए हैं उसके, जो जहरीले फन निकाल दिए गए हैं उससे अलिप्त, फिर बर्ड विदाउट विंग्स, और फाइनली सन एक्लिप्स्ड विथ नो स्पार्कल एट ऑल। तो ये विश्वामित्र मुनि की असहाय स्थिति वहां पर, और ऐसे असहाय स्थिति में आपको क्या लगता है कि विश्वामित्र मुनि ने अपनी हार स्वीकार कर ली? नहीं, विश्वामित्र मुनि ने बिल्कुल अपनी हार स्वीकार नहीं करी। इतना अपने आंखों के सामने देखने के और भुगतने के बावजूद विश्वामित्र मुनि के जहन में बस एक ही शब्द था अब, और वो शब्द था बदला। कलयुग में ये शब्द बहुत यूज किया जाता है। कौन सा शब्द? बदला। कसम पैदा करने वाले की। मां कसम बदला लूंगा। तो विश्वामित्र मुनि अब वशिष्ठ मुनि से किस प्रकार बदला लेते हैं, ये श्रृंखला जानने के लिए, ये पूरा रहस्य जानने के लिए आप लोग आमंत्रित हैं यहाँ पर अगले रविवार को इसी समय इसी स्थान पर। टू बी कंटिन्यूड। ये क्लैश ऑफ द टाइटंस। थैंक यू ऑल वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न? प्रश्न पीछे।
रुजी, आपने ग्रीड के बारे में बताया, मगर आजकल हम लोग देखते हैं कि वो रोजमर्रा की जिंदगी हो, हमारी अर्निंग्स हो, डिग्री हो, कुछ भी हो, हमारा जब तक हम लोग सर्वस्व उसमें नहीं डालते हैं तब तक उसमें से आउटकम नहीं आता है, इवन प्रीचिंग भी हो। तो कैसे हम लोग ये करें कि बेसिक नेसेसिटीज और ग्रीड, इसमें हम डिफरेंशिएट कैसे करें? क्योंकि अगर सोबर वे से अगर कुछ चीज़ करने जाएंगे तो शायद से उसमें से उतना आउटकम नहीं आता है। दूसरी चीज़ ये भी है कि हम लोग को भी ये रहता है कि हम लोग इतना डाल रहे हैं किसी भी एक चीज़ में तो उसमें से मैक्सिमम बेनिफिट आना चाहिए, इवन विथ स्पिरिचुअल लाइफ ऑल्सो। कि हम लोग अगर हमारी पूरी एनर्जी डालकर इतना सब कुछ नियमों का पालन कर कर अगर ये जीवन को जीना चाहते हैं तो ये होता है कि पूर्णता भी इसी जीवन में प्राप्त हो विद द मर्सी ऑफ गुरु एंड गौरांग। तो कैसे मटेरियल और स्पिरिचुअल पार्ट पर हम लोग ये ग्रीड नहीं है इसको ध्यान में रखते हुए मगर हमारी सिंसेरिटी भी पूरी तरीके से दें, ये थॉट रखकर इसको कंटिन्यू कर सके।
जैसे यहाँ पर हमने जो विश्वामित्र मुनि का एग्जाम्पल देखा कि विश्वामित्र मुनि अब उन्होंने जो ऑफर सामने रखा था 1 करोड़ दूध देने वाली गाय, इतने मतलब उनके पास था ये सब कुछ। जब वो ऑफर रखे हैं और स्पॉन्टेनियसली ऑफर रखे हैं मतलब उसके भी ऊपर बहुत कुछ था उनके पास। तो विश्वामित्र मुनि का उदाहरण है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद उनको ये गाय भी चाहिए थी। इतना बड़ा सम्राट जिसके पास इतनी विशाल सेना है, इतना खजाना है, सब कुछ है इनके पास, सब कुछ होने के बावजूद मुझे ये भी चाहिए, वो है ग्रीड। एक्चुअली और उसे प्राप्त करने के लिए, अब जैसे देखिए कि ब्रह्मऋषि वशिष्ठ उन्होंने उसे प्राप्त कैसे किया, जैसे कि बताया जाता है कि रिस्पेक्ट इट हैज टू बी कमांडेड नॉट डिमांडेड. तो उन्होंने अपने तपोबल से, उन्होंने कोई जोर जबरदस्ती भगवान से छीन कर वो गाय नहीं रख रखी थी, उनको भेंट के रूप में भगवान ने वो गाय दी थी. सो ही कमांडेड दैट रिस्पेक्ट. बट विश्वामित्र मुनि, उन्होंने वो एथिकल लाइन क्रॉस कब किया कि जब तक उनको वहां पर अनुमति थी कि आप आइए, सत्कार कर रहे थे वशिष्ठ मुनि कि मैं, आप हमारे राज्य के राजा हैं और राजा होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है कि आप मेरे दर पर आए हैं तो मैं आपका सत्कार करूं. परंतु जब, चाहे वो राजा क्यों ना हो, उन्होंने जब वो एथिकल लाइन क्रॉस कर दिया तब फिर वशिष्ठ मुनि कहे ना, अब आप सत्कार के लायक नहीं हो जब आपने एथिकल लाइन क्रॉस कर दिया है. तो वैसे ही हमें हमारे व्यक्तिगत जीवन में देखना है कि हमारा व्यक्तिगत जीवन में, हमारे पास यदि हमारे जीवन यापन के लिए, जीवन यापन अर्थात दोनों भौतिक और आध्यात्मिक दोनों के लिए, यदि सही रूप से हम उपलब्ध कराकर दे रहे हैं अपने को और अपने परिवार को, तो वहां तक वो एक्सेप्टेबल है. परंतु जो वस्तु, जो चीजें, जो स्थिति हमारे जीवन यापन के उस एथिकल लाइन के परे है और उसकी जरूरत नहीं है, न तो भौतिक रूप से उसकी जरूरत है न आध्यात्मिक रूप से उसकी जरूरत है, जब दोनों रूप से उसकी जरूरत नहीं और उसके पीछे लालायित होना, वो फिर लोभ हो गया. तो हम देखते हैं कितने सारे ऐसे आदर्श गृहस्थ हैं, जैसे हमारे आनंद वृंदावन प्रभु हैं बॉम्बे में. वो चाहते तो वो बहुत कुछ कर सकते थे, उनके पास जो काबिलियत है शेयर मार्केट के अंदर, वो क्या कुछ, आप लोग तो जानते हैं आनंद वृंदावन प्रभु को, तो उनके पास जो काबिलियत है उससे वो पता नहीं क्या कुछ और बंबई में भौतिक रूप से कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जानबूझकर अपने गृहस्थी को एक सिंपल रखा है, ताकि, और सोचो शेयर मार्केट में एथिकल करना सब कुछ. तो मुझे एक बार बता रहे थे, मैंने उनको पूछा था कि आप कैसे मैनेज करते हैं कि शेयर मार्केट में रहते हुए एथिक्स को फॉलो करना, तो उन्होंने कहा सुपीरियर गाइडेंस. उन्होंने एक बार पूरी स्टोरी सुनाई थी मुझे कि एक कोई ऐसा लूप होल उनको पता चला था कि हर्षद मेहता से भी बड़ा घोटाला वो कर सकते थे, इतना बड़ा लूप होल उनको प्राप्त हो गया था, पता चल गया था और किसी को नहीं पता चलता था. तो उन्होंने भक्ति रसामृत महाराज को पूछा इसके विषय में, कि वो बोले कि प्रीचिंग के लिए यूज हो सकता है, वो ये नहीं कि मैं स्वयं के लिए, परंतु इतना प्रीचिंग के लिए यूज हो सकता है. तो जब उन्होंने एक वरिष्ठ उनके गुरु बंधु से पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, डोंट क्रॉस द एथिकल लाइन, दिस इज ग्रीड. तुरंत उन्होंने, उनके एक मित्र को उन्होंने बता दिया था, तो वो तो पागल हो गया था. वो सोचने लगा कि भाई तुम्हारा दिमाग कैसे चलता है. फिर ये आके बोले कि भाई मैं कुछ नहीं करने वाला, मुझे नहीं, मेरे गुरुवर ने मना कर दिया. तुम पागल, तुम्हारे गुरु पागल. तो उसने जो भी वो घोटाला किया और वो आज तक जेल में बंद है, और आज वो उस दिन को याद करके बोलता है, अशोक पारेख उनका नाम है, अशोक पारेख तुम बुद्धिमान निकले, कि तुम इस जंजाल में नहीं फंसे, तुम्हें सही सलाहगर मिल गए थे सही समय पर। तो इसलिए एक गृहस्थ को चाहिए कि वो हर समय अपने जीवन में, उसका जो व्यक्तिगत जीवन है, उसका जो आर्थिक जीवन है और आध्यात्मिक जीवन है, उसके लिए एक सही एडवाइजर रखे। ये प्रश्न मुझे पूछा गया था हमारे क्वेश्चन आंसर सेशन में कि गृहस्थों के लिए गुरु की आवश्यकता क्या है। तो मैंने जवाब में कहा था कि जैसे एक गृहस्थ एक फैमिली डॉक्टर रखता है, एक सीए रखता है, वैसे ही एक गृहस्थ को एक गुरु रखना चाहिए, ताकि वो गुरु सही दिशा में उसको डे टू डे गाइडेंस देता रहे कि भाई ये लाइन के निकट आ रहा है तू। कौन से लाइन के निकट आ रहा है? एथिकल लाइन के निकट आ रहा है। एलओसी, एलओसी, गोला बारूद वहां पे गोलाबारी हो जाएगी, डोंट क्रॉस दैट लाइन। तो मैं आपको प्रिंसिपल्स बता रहा हूं, बाकी एवरी गृहस्थ कैन ट्रांसलेट यूजिंग प्रॉपर सुपीरियर सेल्फलेस गाइडेंस बाय द वे। इसलिए जो मैंने कहा फॉल बैक ऑप्शन क्या होना चाहिए, दुर्योधन की तरह नहीं कि जब भी परेशानी में हो तो हम शकुनी को ढूंढे। तो यदि हमने हमारे सलाहकार शकुनी रख रखे हैं तो फिर हमारा हर्ष भी दुर्योधन की तरह ही होगा। हरि बोल। और कोई प्रश्न किसी का? जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।